ってくださいいい風にします。私たちは何も知らないです。श्रीमत मिल रही है तो श्रीमत को भी याद करना चाहिए कि बाबा ने क्या क्या किस मामले में कैसे कैसे श्रीमत दी। बाबा मत अथवा राय दे रहे हैं अर्थात पढ़ा रहे हैं। पहले पहले कहते हैं बाप को और घर को याद करो, एक को याद करें या दो को याद करें। एक की याद अच्छी या दो की याद अच्छी, ये दो की याद क्यों बताते हैं। बाप को याद करो और घर को याद करो, घर को याद करें। धर्म कौन सा है?
सरकार
निराकार
निराकार को याद करना
माना परमधाम घर नहीं है।
परमधाम को निराकार सिर्फ निराकार का है, साकार और निराकार इधर ही है।
निराकार तो इधर आया हुआ है,
इधर आया तो
इधर आया हुआ है तो जरूर इसका कहीं धाम होगा, तो ठिकाना होगा। अगर उसका ही ठिकाना नहीं होगा तो हम बुद्धि का ठिकाना कहाँ लगाएंगे। जब आया हुआ है इस धरणी पर तो उसका कोई ठिकाना होगा, कोई मुकर्रर रथ होगा। जिस मुकर्रर रथ में वो अपना कार्य कर रहा है तो श्रीमत दे रहा है तो उस घर को भी याद करना पड़े और बाप को भी। बाप को मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, चलते फिरते उठते बैठते तुम अपने घर को क्यों नहीं याद करते। क्या कर्म करते चलते फिरते उठते बैठते बिंदी आना तो मुश्किल है, बिंदी याद आना मुश्किल है, परंतु घर को तो याद कर सकते हो, उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। महीन चीज याद नहीं आती है। अच्छा मोटे रूप को याद करो, भक्ति मार्ग में इसको याद कर लो। भक्ति मार्ग में लिंग को याद करते, इतना बड़ा लिंग, अब इतना बड़ा है थोड़े ही है, तो सूक्ष्म छोटी छोटी सी बिंदी। फिर भक्ति मार्ग में बड़ा बना दिया है, इसलिए बड़ा बनाया है। भक्ति मार्ग में तो किसी को पता ही नहीं है कि परमात्मा ज्योति बिंदु है। हाँ इतना याद रहा कि भगवान इस सृष्टि पर आया होगा तो कोई स्वरूप में आया होगा। जब सत्वप्रधान स्टेज थी ऋषियों महर्षियों की शास्त्रकारों की, तो उनकी बुद्धि में ये बात आ गई कि परमात्मा जरूर कोई शरीर रूपी रथ में आया होगा और उसकी ऐसी स्टेज बनी होगी कि नाक आंख कान इंद्रिया जैसे होते हुए भी नहीं, कान से सुनते हुए भी जैसे नहीं सुन रहा। सारी दुनिया में भले ग्लानी होती रहे लेकिन एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, कान होते हुए भी जैसे कि नहीं, ऐसे ही और भी इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो शरीर मनुष्य के शरीर में से इंद्रियां काट दी जाए, हाथ काट दिए जाए, टांग काट दी जाए, नाक आंख कान मुंह ये निकाल दिए जाए, तो क्या बचेगा? लिंग ही बचेगा। तो निराकार स्टेज की यादगार लिंग दिखाया गया। अब तुम बच्चे तो जानते हो कि ऐसा तो कोई मनुष्य होता नहीं जो अपने घर को भूल जाए। ऐसा होता है कोई? अपना घर तो सबको याद रहता है। वन विलायत में होगा तो भी अपना घर तो याद होगा ना। बाप भी बच्चों को सीमत देते हैं। तुम बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। मन साकार में निराकार को याद करो। तो तुमको उनको याद करना है तभी तुम पवित्र बनेंगे। उनको कह के दूर क्यों कर दिया? तो जिस समय वाणी चल रही है उस समय ब्रह्मा के तन से चल रही है और ब्रह्मा का तन तो खलास होने वाला है। विनाशी है या अविनाशी? वो तो विनाश होने वाला है। तो विनाशी को याद करेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इशारा दिया तो तुमको उनको याद करना है। उनको माने जो आने वाला भूपरा रथ है, प्रत्यक्ष होने वाला है, उसको याद करना है तब ही तुम पवित्र बनेंगे। माने इस ब्रह्मा के रूप को तन को याद करने से तुम पवित्र नहीं बनोगे। अभी तुम छी छी हो। माया ने तुमको 63 जन्म से छी छी बनाया है। क्या माया रावण ने तुमको 63 जन्म से छी छी बनाया है? तो बाप अभी जो श्रीमत देते हैं उनको याद करो। इसको याद करें, श्रीमत को याद करें या श्रीमत देने वाले को याद करें? उनको माने, उनको माने किसी व्यक्ति की तरफ इशारा है ना? हाँ, जो श्रीमत दे रहे हैं उनको याद करो। बाप कहते हैं अपने घर को याद करो, फिर अपने सुखधाम की भी याद दिला। बाप से क्या मिलेगा? बाप से कुछ तो मिलता है। अंध के बाप से भी जन्म जन्मांतर मिलता आया, और ये तो बेहद का बाप है। तो बेहद के बाप से कुछ मिलेगा ना? कुछ मिलेगा कि सब कुछ मिलेगा? सब कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। तो सुखधाम को भी याद करो, क्योंकि बाप का वर्षा है शांतिधाम और सुखधाम। शांतिधाम माने मुक्ति, सुखधाम माने जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति। तो ये बात भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में मानव मतों अनेक प्रकार, तुंडे तुंडे मते भिन्ना, जितने बुद्धियां हैं, जितने मनुष्य हैं उतनी बुद्धियां हैं, उतनी उतनी मतें हैं। दुनिया में तो सभी एक दूसरे की मत पर ही चलते हैं, लेकिन तुमको एक बाप दूसरा एक बाप की ही मत पर चलना है। तुम बच्चों को अभी ईश्वरीय मत मिलती है ना? क्या इसकी मत मिलती है? दुनिया में जो भी है वो दुष्ट शासन करने वाले हैं इस दुनिया में। सत्य की दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो तो अब है नहीं। तो जो भी है वो सब की कंट्रोलिंग अच्छी नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा बन जाती है। एक शिव बाबा ही है जो अच्छी से अच्छी दुनिया की कंट्रोलिंग सिखा के जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ता है ईश्वर। ईश्वर माने शासन करने वाला, और वर्मा माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कंट्रोलिंग करता है, मारपिटाई नहीं करता है, दंड नहीं देता है। क्या तो प्यार का सागर है ना। कुमार का सागर तो धर्मराज है, शिव बाबा तो प्यार का सागर है। तो प्यार का सागर ऐसा श्रेष्ठ शासन करता है कि प्यार से ही सारी दुनिया को कंट्रोल, माने सबके दिल जीतता है। दिल जीतना अच्छा या मार्केट के काम करना अच्छा है? दिल जीतना अच्छा। तो शिव बाबा का नाम ही पड़ गया ईश्वर। इसीलिए ऐसा जो शासन करता है दुनिया का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उसकी मत, उसकी मत तुमको मिलती है। उस मत को भूलना नहीं है, न मत देने वाले को भूलना है। यहां तो बच्चे बाप को भूल जाते, जब बातें याद रहेंगी, बाप की बोली हुई बातें याद रहेंगी। जब बाप ही भूल जाएगा, बाप ही भूल जाएगा तो बाप की बातें भी भूल जाएंगी, तो अपने घर को भी भूल जाते। मत देने वाली आत्मा को भी भूल जाते हैं, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा है। और फिर जिस घर में आकर के वो मत देती है, उस घर को भी भूल जाते हैं, और श्रीपद को तो फिर भूल ही जाते हैं। फिर क्या करते हैं? वो श्रीमत को भूल जाएगा, मत देने वाले को भूल जाएगा, जिसमें आकर के मत देता है, जिसके द्वारा मत देता है उसको भूल जाएगा, तो फिर किसको याद करेगा? या तो मन मत पे चलेगा, या तो देहधारी गुरुओं की मत पे चलेगा। फिर क्या होता है? फिर तो सुखदाम को भी भूल जा देंगे। इसलिए बच्चे मुरझाए हुए रहते हैं, क्या न बाप को याद करते हैं, न बाप के बच्चे अपने घर को याद करते हैं, बाप के घर को याद करते हैं, और न सुखधाम नई दुनिया को याद करते हैं। जो बाप का वर्षा है, कुछ भी नहीं याद रहता तो मुरझा जाते हैं। बाप कहते हैं, क्या तुमको लज्जा नहीं आती है? हैं? किस बात की लज्जा? सब कुछ भूल जाते हैं, तुमको लज्जा नहीं आती? बाप और घर को भी तुम भूल जाते हो, तो सहज बात है। तीसरे जन्म क्या करते रहे? कोई अपने बाप को और अपने घर को भूला गया ना? नहीं, ये तो प्रैक्टिस पड़ी हुई है। यहाँ तुम अपने बाप को ही भूल जाते हो और घर को ही भूल जाते हो, इसका कारण क्या है? तीसरे जन्म की प्रैक्टिस पड़ी हुई है पक्की। बाप को भी याद करते रहे, लौकिक बाप को, और अपना घर भी याद करते रहे। भल विलायत में भी चले गए तो भी घर तो याद आता ही रहा, तो यहां क्यों भूल जाते है? तो कारण होगा रावण को आने का, इसलिए भूल जाते हैं कि 63 जन्म से उस बेहद के बाप का हमको परिचय सही था ही नहीं। 63 जन्म से हम भूले हुए हैं, एक जन्म में याद पक्की कैसे हो जाएगी? अभी तो हमको पक्की पक्की पहचान मिली है, लेकिन अब 63 जन्मों की जो माया है, कहीं किसी से संबंध जोड़ा है, कहीं किसी से संबंध जोड़ा है, तो वो संबंध जोड़ने वाली माया स्त्री या पुरुष के रूप में हमको पकड़ने के लिए आती है, तो हमारी बुद्धियों को क्या करती है? भरम है, बाप से बुद्धियों काट करके और अपनी तरफ बुद्धि चिपकाई देती। अब बाप कहते हैं, तुमको लज्जा नहीं आती? अब बताओ क्या करे है? बच्चे तो बच्चे हैं, कच्चा बुद्धि है, तुम घर में भी नहीं अपने जा सकते हो, तुमको घर की पहचान दे दी, ये तुम्हारा घर है, तो अपने घर में भी नहीं जा सकते हो। घर को याद करना पता लग गया कि हमारा घर है, तो याद करना चाहिए ना। तुम इसलिए नहीं जा सकते हो, अपने घर में तुम्हारी बुद्धि किस लिए नहीं जाती? चलो बाप में बुद्धि नहीं जाती है, बाप तो बिंदु है, इन चीज को याद करना थोड़ा कठिन है। घर तो तुम्हारा छोटा बिंदु नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, तो घर को तुम्हें याद क्यों नहीं आती है? इसलिए नहीं आती है कि तुम अपवित्र हो। घर पवित्र है या अपवित्र है? अभी बाप प्रवेश किया हुआ है तो अभी पवित्र माने या अपवित्र माने? बाप ने उस तन को चुना है तो जरूर श्रेष्ठ ही होगा। तो मुझे याद करो तो तुम अब पवित्र बन जाओ और पवित्र धाम में पहुंच जाएंगे। इतना सहज बैठ करके समझाते हैं कि नीचे नीचे बच्चों अभी तुम भूलो, भुलाने की कोशिश ही जरूर करो। माया किस रूप में आती है? जो बुलाई देती है। अरे कोई स्त्री के रूप में आती है, या तो कोई पुरुष के रूप में आती है, या तो कोई पदार्थ के रूप में आती है, कोई संबंधी के रूप में आती है। माया आती जरूर है, आती है और हमको बाकी याद बुलाई देती है। परंतु तुम मत भूलो, भले वो माया आकर के बुलाती है पर बुद्धि में बैठा रहे, अरे हाँ ये बुला रही है, अच्छा छोड़ो इसे सब बता दी। अरे बस बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं ये बातें, क्या ऐसे नहीं ब्रह्मा के द्वारा बैठ समझाते हैं या किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी के द्वारा बैठ समझाते हैं? नहीं, बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट माने जो बाप का अपना स्वरूप है, जिस अपने स्वरूप के द्वारा वो संसार में प्रत्यक्ष होते हैं भगवान के रूप में, उस रूप में समझाते हैं। और जो जैसे ब्रह्मा का रूप है, चार ब्रह्मा हैं, पांच ब्रह्मा हैं, उनके द्वारा भी शिव बाप अपना कार्य तो कराते हैं, लेकिन वो मेरे डायरेक्ट रूप नहीं है। मैं डायरेक्ट रूप के द्वारा तुमको समझाता हूँ। ब्रह्मा के तन से सुनाया कि समझाया? सुनाया। समझने और सुनाने में, सुनने में और सुनाने में, समझने और समझाने अंतर होता है या नहीं? क्या अंतर होता है? सुनना सिर्फ सुनाना कान से होता है, समझना समझाना ये तो बुद्धि से होता है, ये बुद्धि का काम है। बुद्धि तो ऐसे अटैच है आत्मा के साथ, क्या कोई को कानों से सुनाई पड़ता हो या न पड़ता हो, लेकिन मन बुद्धि तो सबको जन्म से जैसे विरासत में मिलती है, हरेक को भगवान की दात मिलती है बुद्धि जन्म के। किसी को बढ़िया बुद्धि मिली है जन्म के अनुसार और किसी को नंबर वार बुद्धि मिलती है। बुद्धि मिलती सबको है। तो बच्चे अभी तुमको अपने घर चलना है, चारों तरफ से बुद्धियों को मोड़ करके कहां जमा देना, अपने घर में चलना है। अभी तुम पूरा चल नहीं सकते, छोटे बच्चे हैं तो उंगली पर चलाना पड़ता है। अभी तुम पूरा चल नहीं सकते हो क्योंकि तुम छी हो गए। पवित्र गुनगुन बनेंगे तो तुमको ले जा रही। ये तुमको याद आ रहना चाहिए ना, बाप घर राजाई, ये तो क्या याद करना अच्छा है ना? क्या तीन बातें, बाप की याद रहे, घर की याद रहे, तो साकार तन है वो घर कैसे है? आत्माओं के रहने का स्थान तो परमधाम है, परमधाम में तो बाबा था, अभी तो नीचे आया हुआ है, तो जिस तन में आया हुआ है मुकर्र रूप से वो घर कैसे है? घर में सकून ज्यादा मिलता है। कहीं भी दुनिया में घूम जाओ, घर में जितना सकून मिलता है उतना और कहीं सकून नहीं मिलता है। आराम, उनको आराम जो है वो देने वाला घर ही है। तो बाप, घर और राजाई, ये तीन याद करना अच्छा है ना। तुम जानते हो हम अब राजाई में जाने वाले हैं। तुम बच्चे 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग के मालिक थे क्या? सारे ही बच्चे स्वर्ग के मालिक थे? सारी दुनिया का, सारे स्वर्ग का मालिक एक होगा क्या? सारे ही होंगे, एक होगा। क्यों? वो एक ऐसा नहीं है जो बच्चों को अपने के तरीके से रखता है। वो बाप का सो बच्चों का ऐसे नहीं रखता। यथा राजा तथा प्रजा वहां नहीं होती है। वो पहला ही जन्म एक ऐसा है जहां यथा राजा तथा प्रजा होती है, बाकी में तो फिर नंबरवार होता जाता है। क्या आज की सरकार, आज के जो कुर्सियों पर बैठने वाले हैं राजा हैं, मिनिस्टर कहो, वो ऐसे हैं यथा राजा तथा प्रजा है? कि प्रजा ऐसे समझेगी कि ये मिनिस्ट्री हमारी भी है? कहते हैं आजकल मिनिस्ट्री हमारी है, लेकिन वो तो 5 साल के लिए जब बैठ जाते हैं तो सबको ठेंगा दिखा देते हैं। कहने की बात अलग रही। तो देखो अभी फिर से तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, इसमें मुझने की दरकार नहीं है। क्या इस बात में मुझान आती है या नहीं आती है? क्या हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे? नहीं आती है? आती है, आती है। जब माया फटकाती है तो दिल में आता है, अरे हम क्या स्वर्ग के मालिक बनेंगे, क्या मालिक के बालक बनेंगे। बालक तो दूध में बैठता है, बहुत नजदीक होता है। बाप कहते बुझने की दरकार नहीं, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर अभी तुमको बनना है। लेकिन कैसे बनेंगे? प्रश्न कर दिया, कैसे बनेंगे? बाप की याद से हम बनेंगे, याद की यात्रा से बनेंगे। अच्छा, क्या वहां सभी बनेंगे? विश्व के मालिक, स्वर्ग के मालिक, वहां सभी बनेंगे? नंबरवार बनेंगे। क्या होगा इसमें? मुझे नहीं की तो दरकार नहीं। तुम्हारा घर जो था वो ही तुम्हारा घर बनेगा, इसका तुम फिक्र मत करो कि वहां घर कैसे बनेगा। कहां स्वर्ग में घर बनाएंगे? क्या पूरी दुनिया स्वर्ग में घर बनाए जाते हैं? क्या हम भी कारखाने चलेंगे? नीचे ईंटों का भट्टा चलेगा है? नहीं, क्या करेंगे, कैसे बनेंगे घर? वहां माया दासी होती है, माया भी दासी और प्रकृति भी दासी होती है। अभी तो हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही है प्रकृति भी और माया, रावण जी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वहां क्या होगा? वहां ये दुनिया की दोनों बड़ी से बड़ी जो शक्तियां हैं वो हमारी दासी बन जाएगी। दासी बनेगी तो प्राकृतिक रूप से बड़े बड़े पहाड़ों पर क्या कहते हैं, अजंता एलोरा जैसी गुफाएं जो 2500 साल पहले बनी हुई अभी मिल रही है, बढ़िया बढ़िया गुफाएं बना, ऐसी गुफाएं होंगी जिनमें हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे, ऑटोमेटिक रोशनी हो रही होगी, कोई बरसात आदि का कोई डर नहीं रहेगा। अभी तुमको जन्म लेना ही है स्वर्ग में, ये पक्का करो। फिर जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतनी प्राप्ति करेंगे। ये पढ़ाई है ही नरक से स्वर्ग में ले जाने की, क्या कहां से कहां ले जाती है? नर का मनुष्यों ने जो दुनिया बनाई है वो दुनिया क्या बन गई है? नर बन गई। उस नरक से कहां ले जाते हैं? स्व स्व ग स्व माने आत्मा, और आत्माओं में भी सबसे ज्यादा स्व स्थिति में टिकने वाला कौन? अरे भूल गए, जितनी भी आत्माएं दुनिया में हैं, जितनी भी आत्माएं परमधाम में हैं, उन आत्माओं के बीच में सबसे ज्यादा स्व स्थिति में टिकने वाला कौन? शिव बाबा। शंकर क्यों? अरे एक को बोलो ना, शंकर तो कभी टिकता है कभी नहीं टिकता है, लेकिन जब याद में टिक जाता है तो शंकर का नाम शिव के साथ ऐड हो जाता है, दूसरे देवताओं का ऐड नहीं हो पाता। माने ठीक है दूसरे नंबर पे तो है, लेकिन सबसे जास्ती स्व स्थिति में टिकने वाला तो शिव है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, तो वो ईश्वर है, वो है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा। उसके मुकाबले सब आत्माएं नंबर वाला हो रहे हैं। तो ये पढ़ाई नरक से स्वर्ग में ले जाती है। स्वर्ग बनाता भी कौन है? जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है वो ही स्वर्ग बनाने वाला है। स्वर्ग में ले जाते हैं, इसको कोई भक्ति नहीं कहा जाता है। क्या ये तो तुम्हारी भक्ति भावना की बात है क्या, कि तुम स्वर्ग में जावेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में जावेंगे? ये कोई भक्ति भावना की बात नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल सच्चाई है, ये ज्ञान है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में कोई भी किसकी ऑक्यूपेशन बायोग्राफी को नहीं जानते, और यहां ज्ञान में, ज्ञान मार्ग में तो हम देवताओं की भी बायोग्राफी को जानते हैं, भगवान की भी बायोग्राफी को जानते हैं, और हम अपनी बायोग्राफी को भी जान जाते हैं, अपने संगी साथियों की भी बायोग्राफी को, बायोग्राफी माने जीवन कहानी, हिस्ट्री, ऑक्यूपेशन माने धंधा, क्या धंधा है, जैसे बंदर है, बंदर कुछ समझते हैं क्या? जहां भी कुछ देखेंगे तो पकड़कर हप करने की कोशिश करेंगे। इस दुनिया में सब जैसे बंदर हैं, मंदिर में भी कूद कर चले जाएंगे, बाहर की दुनिया की बंदर मंदिर में भी कूद कर चले जाएंगे। अब बेहद के बंदर, बेहद के बंदर कैसे ही है, इस दुनिया में भी भोग भोगने में सबसे आगे रहते हैं, और नई दुनिया में भी, नई दुनिया मंदिर बनेगी उसमें भी सबसे आगे चले जाते हैं, कूद कर चले जा रहे हैं। कूद कर चले जाने माने, कूद कर चले जाना माने हाई जंप लगाना, जैसे शंकर के लिए कहते हैं है? शिव की सवारी बैल पर होती है या शंकर पर होती है? शिव की सवारी मनुष्य के ऊपर होती है, मनुष्य में ही आएगा, और मनुष्य को किसने दिखा दिया? शंकर की सवारी बैल पर दिखा दी, तो बैल पर सदैव सवार रहते हैं या जब हाई जंप लगाते हैं तब सवार होते हैं? जब हाई जंप लगाते हैं तो सवार हो जाते हैं। तो देखो मंदिर में भी बंदर कूद कर चले जाएंगे, वहां से भी कुछ न कुछ ले आवेंगे, कहां से, स्वर्ग में भी कूद के चले जाएंगे, वहां से भी कुछ न कुछ लेकर आए जाएंगे। तुम भी जहां तहां घुस जाते हो, जो मिलता है सो खा लेते हो। है? बढ़िया माल नहीं मिलता है? अच्छा, जैसा ही मिले वो तुम खा लेते हो, तो बंदर हुए ना। पता कुछ भी नहीं है, बंदरों को कुछ पता होता है क्या? सिर्फ नाम सुन लिया है, ये देवी देवताएं हैं बस, और तो कुछ नहीं जानते। भक्त लोग हनुमान के पास ले जाएंगे, वो भी कौन है? अरे उसका मुख कौन से जानवर की तरह दिखाया, तरह दिखाया है? बंदर की तरह हनुमान को दिखाया। हनुमान के पास भक्त ले जा रहे हैं, कहेंगे ये हनुमान है। अच्छा क्या करें, बस हनुमान भगवान है, हाथ जोड़ो पांव पड़ो बस। उन भक्तों की ये मत नीति है, ये बंदर हनुमान है, इसके हाथ जोड़ो पांव पियो पांव पड़ो क्योंकि ये भगवान है। अब ये अंधश्रद्धा हुई या श्रद्धा विश्वास में, ये तो अंधश्रद्धा सिखाई, ये मत मिल जाती है। अब बाप तो ऐसी अंधश्रद्धा की मत नहीं देते, हर बात को गहराई से समझा करके कारणकारी का विश्लेषण करके फिर हर बात समझाते हैं। ऐसी मत बाप नहीं देते हैं जिसमें अंधश्रद्धा भरी हुई है। बाप तो कहते हैं पहले पहले आपको पेशन होगा इसका, बाप का भी ऑक्यूपेशन जानो, देवताओं का भी ऑक्यूपेशन जानो। अगर वो कहते हैं ये बंदर हनुमान है और भगवान है, तो इसे भगवान ने क्या काम किए होंगे? इसकी सीरत जो है, इसका जो चेहरा है वो बंदर जैसा क्यों बनाया गया है? सूरत से क्या पहचानी जाती है? सीरत पहचानी जाती है, ऑक्यूपेशन पहचाना जाता है। तो ऑक्यूपेशन को जानो, नहीं तो अंधश्रद्धा हो जाती है। अभी तुम बच्चों ने ये समझा है, कल कितने वर्षों का है ये समझा है या ऐसे ही धारण कर लिया है? तो कल कितने वर्षों का, दुनिया अंदर तो लाखों वर्ष का है, तुमने समझा है कि ये कल्प 5000 वर्ष का है? कैसे समझे? अंधश्रद्धा से मान लिए, कैसे बताओ? नहीं रूप बताओ, प्रमाण बताओ कि कल 5000 वर्ष का है, कैसे मान ले बिना रूप प्रमाण के? बुद्धिमान बाप के बच्चे तो बुद्धिमान बुद्धिमान होने चाहिए, बिना रूप प्रमाण के तो कोई बात नहीं मान लेनी चाहिए। कोई हमसे पूछे तुमने कैसे कह दिया कल 5000 वर्ष का होता है, शास्त्र में तो लिखा है लाखों वर्ष का कल्प होता है, तो क्या बताएंगे?
इससे तो मिलता है 2500 साल।
हाँ 2500 साल, तो 2500 साल का बोला बताओ, 5000 साल में क्यों बताते हैं?
हाँ
नहीं, वो कहते हैं कि जो द्वापर से हिस्ट्री मिल रही है 2500 साल की, उसी में सती उतरेता द्वापर का युग है, वही हिस्ट्री है, वही हिस्ट्री हम तुमको शास्त्रों में बताते हैं कि त्रेता युग में राम कराजी था, हिस्ट्री बताते हैं ना कि त्रेता युग में राम कराजी था, नहीं बताते? बताते क्या कहेंगे? साढ़े 1200 वर्ष, वो भी कहां से उठा लिए? किसने बताया? शास्त्रों में ये बात भी लिखी हुई है कि हर युग की आयु 1250 वर्ष होती है, लेकिन मनुष्य गुरुओं ने क्या किया, उसको देवताओं के वर्ष से गुणा कर दिया 365, तो लंबा कर दिया, एक एक दिन की आयु लंबी कर दी। तो बाप कहते हैं ये सब अंधश्रद्धा शास्त्रों ने सिखाई है, वास्तव में हिस्ट्री वहां की बनती है जहां मनुष्य दुखी होता है, तो दिन दिन गिनता है तब हिस्ट्री बनती है। तो दुख की दुनिया में हिस्ट्री बनाई गई, सत्यपत्रिका में कोई हिस्ट्री नहीं बनाता था, वहां कोई संबंध नहीं होता था। अभी जो बाबा कहते हैं संबंध है एक एक एक, वो भी संगम युग में होगा या सत्य में होगा है? एक ने कहा संगम में, एक ने कहा सत्य में होगा। सत्य हुए तो सब सुखी होंगे क्या? एक एक दिन गिनने की दरकार है ही नहीं। ये यहाँ संगम युग में दुखों के पहाड़ गिन रहे, यहाँ लंबा समय हो जाएगा। बाकी ऐसे नहीं है, 2000 वर्ष की जो हिस्ट्री है वो सुख की दुनिया की है, वो सिर्फ दुख की दुनिया की हिस्ट्री है। 2000 साल, 2000 साल जो सुख रहा, जो दिन रहा, दिन में तो सोझरा होता है कि ठोकरे खाते हैं, दिन में तो सोझरा होता है, तो देवता बहुत सुखी थे वहां ठोकर खाने की बात, दुखों की ठोकरे नहीं खाते थे, इतने सुखी थे देवताएं कि उस सुख के अंदर उनको हिस्ट्री बनाने की दरकार ही नहीं थी। तो 2000 स्वर्ग, 2000 अंदर इस तरह टोकरे मिला के 5000 वर्ष की ये दुनिया दुनिया है। और भी बता सकते हैं मोहनदोल और हड़प्पा की जो खुदाई हुई है उसमें पुरानी चीजें कोई ऐसी नहीं मिली है जो 5000 साल से पुरानी हो। इससे भी क्या साबित होता है कि दुनिया 5000 साल पुरानी है। क्रिश्चियंस की बाइबल में और उनके जो शास्त्र हैं उनमें भी लिखा हुआ है कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत में पैराडाइज था, स्वर्ग था। तो उससे भी साबित हो जाता है क्राइस्ट के 2000 साल और उससे पहले के 3000 साल, कितने साल हुए? 5000 साल पहले पैराडाइज था, वो ही पूरे हो गए 5000 साल। अब फिर 5000 साल के बाद फिर स्वर्ग आने वाले। तो तुम्हारी बुद्धि ने समझा है कि कब कितने वर्ष हो गए है, ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है क्या? समझा हुआ दूसरों को समझा सकता है या नहीं समझा सकता है? समझा सकता, अगर खुद ही नहीं समझा होगा तो दूसरों को भी नहीं समझा सकता। तो भक्ति को कहा जाता है रावण राज्य। क्यों रावण राज्य क्यों कहते हैं, कुंभकर्ण राज्य क्यों नहीं कहते हैं?
रावण
नहीं, रावण को 10 सिर दिखाई जाती है, कुंभकर्ण को तो एक ही सब, तो सच्चा था, एक ही बात बोलता था। भले रावण संप्रदाय था लेकिन सच्चा था, झूठा नहीं था, दो दो बातें दस दस बातें नहीं करता था। और रावण तो 10 सिर है तो 10 मुंह से 10 तरह की बातें बनाता है। भक्ति को कहा जाता है रावण राज्य, सिर्फ भक्ति नहीं रावण राज्य कहा जाता है। तुम बच्चे दुनिया को जानते हैं, दुनिया के मनुष्य तो बंदर से भी बदतर हैं। मनुष्य मनुष्य की ही बुद्धि पर चलते हैं क्या? मनुष्य होकर किसकी बुद्धि पर चलना चाहिए? जानवरों की मत पर चलना चाहिए क्या? मनुष्य तो मनुष्यों की हिम्मत पर चलते हैं। तुम अखबारें आदि तो पढ़ते नहीं। अभी हरियाणा का गवर्नर आया है, कहते हैं मेरे गुरु नंदा है। क्या नाम था पूरा? गुंजारी लाल नंदा है। वो मुझे जो कुछ कहेंगे वही हम करेंगे, ये हमारा गुरु है, एडवाइजर है, उनको एडवाइस देता है। अखबार में बैठे उन्होंने ये लिखा है, बस इसी बात पर खुश हो जाते हैं, बंद लगता है ना। वो गुलजारीलाल नंदा गया कुरुक्षेत्र, वहां एक तालाब है, तालाब में पानी होता है, बरसात होती है तो बरसात के कनेक्शन से पानी भर जाता है। अगर बरसात न पड़े तो तालाब का क्या हाल होगा? कीचड़ हो जाएगा, पानी रहेगा नहीं, भले पानी सूख जाता है, तालाब का पानी भक्ति मार्ग में सूख जाता है तो भी उनको तीर्थ समझते हैं। और कोई सागर तो है नहीं, सागर तो एक शिव बाबा ही है, ज्ञान का सागर, उसमें तो पानी फूटने का सवाल है ही नहीं, वहां तो कितना भी स्नान करो। और तालाब का पानी सूख जाता है तो कीचड़ में स्नान कर लेते हैं भक्ति मार्ग, यहाँ कौन से स्नान की बात है। ज्ञान जो है उसमें गंदगी भर जाती है, क्या विचार की गंदगी भर जाती है, बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है तो भी उसी में स्नान करते हैं, शुद्ध बुद्धि हो। और यहाँ तो बाप कहते हैं मैं तो सागर है, ये सागर जो है इस सागर का पानी तो कभी सूखने वाला नहीं है, ये कीचड़ बनने वाला नहीं है, वहां तालाब में जाकर के अपने शरीर पर मिट्टी मिलती है, बन के कौन सी मिट्टी मिट्टी मारे देह अभिमान की मिट्टी रगड़ते हैं, जैसे गंगा में जाते हैं ना तो कोई कोई साधु संत महात्मा गंगा का रेत अपने शरीर पर रगड़ते हैं, परंतु वो तो गंगा का है, गंगा की रेत में और यमुना की रेत में क्या अंतर है, गंगा का रेत जो है चिपकता नहीं है और यमुना का मिट्टी चिपक जाती है, देह अभिमान की मिट्टी ऐसी है कि जिसके भी संग के रंग में आएगा उसको अपने कर्म आकर्षित कर देगा, चिपक जाएगी। तो बताओ क्या ये तालाब, क्या ये नदियां पत्त पावनी है, तालाब भी सूख जाता है, नदियां भी सूख जाती, गंदा पानी आ जाता है, नदी नाला बन जाती है, एक तरफ कहते हैं कि गंगा पत्त पावनी है, अभी कहते हैं वहां जो कीचड़ पट्टी लगी हुई है उसको हैवन बनाओ, इसको क्षेत्र में जो तालाब है यहाँ कीचड़ इकट्ठा हो जाता है उसको कहते हैं कि हम यहाँ स्वर्ग बनाएंगे, इसको हम कैपिटल करेंगे, अब नंदा जो कहेंगे सो ही हम करेंगे, गुरु जी जो कहेंगे हम वो ही मानेंगे, देखो क्या हाल है इन बगुले भक्तों का, भक्त लोग बगुले ही होते हो, बगुला क्यों कहा जाता है, है? बगुला एक टांग से खड़ा रहता है पानी में, ऐसे लगता है देखने में कोई तपस्या करता है, है? देखने में तपस्वी लगता है, और जहां मछली आई फटाक से हम कर लेता है, फिर एक टांग पर खड़ा हो जाता है। तो बगुला इसलिए कहा जाता है कि मांस खाता है, सड़ा हुआ मांस भी खा लेता है, मांस अर्थात जहर खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं, जहर खाते हैं, विषय विकारों का जहर है, व्यभिचार का जहर है, इसलिए हंस और बगुले इकट्ठे रहे, क्या बोला, बगुले क्या खाते हैं, सड़ा हुआ मांस, सड़ी हुई मछली भी खा जा रही, और हंस, हंस तो बहुत ही चूहता है, वो सड़ा हुआ मांस तो बिल्कुल चूहेगा भी नहीं, तो हंस और बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते, हंस तो कब झगड़ा नहीं करेगा, क्या हंसों की क्या विशेषता बताई, वो कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, और बगुले बक 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 झगड़ा करते ही रहेंगे, बहुत ऐसे होते हैं जो बगुलों से तंग होते हैं, हंस तो बहुत ही छोड़ते हैं, वो बगुले तो गंध खाते हैं, जो पक्के निश्चय वाले होते हैं वो बगुलों के साथ रह नहीं सकते, क्या कहा, हम लोग साथ कौन रहते हैं? क्या बताया? गंध खाने वाली बबलों के साथ लगातार कौन रहेंगे? जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो बबलों के साथ रहते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे वो बबलों के साथ रह नहीं सकते। वो कोशिश करेंगे कि हम इनसे क्या करें, हम इन बबलों के संग के रंग से अलग हो जाए। कहेंगे हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इनके साथ, ये तो अपना टाइम बर्बाद कर ही रहे हैं। हम अपना उनको अपनी धर्मशाला चलाने दो, हम अपनी धर्मशाला अलग बना, क्यों टाइम वेस्ट करें? अरे हंसों का तो काम ही है सभी खुद मोती चुगना और दूसरों को मोती चुगना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, सभी हम ब्राह्मण हैं, सभी हम हंस हैं, बाकी तो सभी शूद्र और बगुले हैं। शूद्र पैरों में होते हैं ना, विराट पुरुष का चित्र बनाते हैं, शूद्रों का ठिकाना कहाँ है? पांव में। और ब्राह्मण कहाँ दिखाए जाते? चोटी में दिखाए जाते। तो तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्राह्मण, शूद्र तो पैर में होते हैं, विराट रूप का चित्र भी लगा हुआ है, इसमें दिखाते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कहां की यादगार है? अरे ये यादगार कहां की है? ये भी संगम युग में अभी प्रैक्टिकल ये सब कुछ चल रहा है। कोई देवता बनने वाले हैं, कोई क्षत्रिय बनकर के त्रेता में पहुंचेंगे, कोई वैश्य बनेंगे द्वापर में, कोई शूद्र भक्ति मार्ग में जो विराट का रूप का चित्र बनाया है उसमें ब्राह्मणों को बोल शूद्र के बाद उनको ब्राह्मण कौन बनावेगा इसका किसी को भी पता नहीं। पांव में है शूद्र, शूद्र के बाद क्या होने चाहिए? सीधे देवता बन जाएंगे। यहां ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होता है? शिव बाबा आके ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं या शिव बाबा सीधा शूद्रों को पढ़ाते हैं? शिव बाबा ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाए जाते हैं, फिर ब्राह्मणों को बैठ करके शिव बाबा शिक्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। ब्राह्मण बनने बगैर तो कोई देवता बन नहीं सकता, क्योंकि सभी बगले ही बगले हैं, नॉलेज तो किसी को कुछ है ही नहीं। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, तुम गाते भी हो पतित पावन आओ, तो अभी बाप कह रहे हैं अब तुम पावन हो जाओ, तुम बार बार काम चिता पर चढ़ने से पतित बने हो, नहीं तो बताओ तुम पतित कैसे बने? क्या 63 जन्म पतित बनने की प्रैक्टिस होती रही तो क्या हो गए? जोड़ी जोड़ी पतित हो गए, विकार से ही मनुष्य पतित बनता है। क्या कार्य करने से पतित नहीं बनता? ऐसे बनता है, कार माने कार्य और विकार माने विपरीत कार्य। कोई भी कार्य है प्यार और मार में अंतर तो होता है, प्यार का कार्य हो और प्यार के कार्य को मार में बदल दिया जाए तो क्या होगा, क्या कहा जाएगा उसे? विकार कहा जाएगा। वे माने विपरीत, जो सीमित है कि सबको सुख देना है और सुख लेना है, सुख देने और लेने का कार्य कर्म इंद्रियों से नहीं किया, क्या किया? दुख लिया और दुख दिया, तो मनुष्य पतित बन गई। अभी बाप भी कहते हैं काम पर जीत पाने से तुम जगह जीत बन जाते। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, जिन्होंने जगत पर जीत पाई थी ना, तुम इनकी डायनेस्टी में आ जाओगे, इनकी डायनेस्टी में। जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण है, ऊंच से ऊंच नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले, इनकी डायनेस्टी में आ जाओगे, ऊंच से ऊंच डायनेस्टी में आ जाओगे। मैं जब आता हूं तो नई दुनिया स्थापन करता हूं, क्या ऊंचते ऊंच बाप क्या करते हैं, ऊंचते ऊंच बाप आकर के ऊंचते ऊंच नई दुनिया स्थापन करते हैं। और जितने भी हैं धर्म पिता है, वो नंबरवार है या ऊंचते ऊंच नंबरवार धर्म पिता है, तो नंबरवार धर्म पिता है ऊंची राजधानी कैसे स्थापन करेंगे। बाप के लिए तो गए हैं ऊंचा तेरा काम ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा दाम, तो मैं नई दुनिया स्थापन करता हूं। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, ये प्रूफ है ना, क्या क्या प्रूफ है। और दुनिया में जो भी राजाएं हैं जो भी देवताएं हैं सबकी ज्ञानी है, लेकिन शिव बाबा ने जिनकी राजधानी स्थापन करी लक्ष्मी नारायण की, उनकी कोई ग्लानी न शास्त्रों में है न दुनिया उनकी कोई ग्लानी करती है। ऐसी संपन्न राजधानी मैं आकर के स्थापन करती हूं। छोटेपन में राधे कृष्ण प्रिंसिपल से थे कौन, ये लक्ष्मी नारायण। तुम यहां आए ही हो सत्य का प्रिंसिपल बनने के लिए, बाप कहते हैं काम मार, इन पर जीत पाने से तुम वैकुंठ पवित्र दुनिया में जा सकते हो, इस पर जीत पाने से काम विकार पर जीत पाने से तुम नई दुनिया में जा सकते हो, काम पर अगर जीत नहीं पाई तो तुम स्वर्ग में जा नहीं सकते हो। और स्वर्ग कहा जाता है सत्य, कामों को स्वर्ग नहीं कहा जाता है, चोरी चकारी के कामों को स्वर्ग नहीं कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सत्युग का नाम ही क्या पड़ा है, सत्ययुग। चोरी चकारी करने वाला होगा वो झूठ बोलेगा या सच बोलेगा, वो तो झूठ बोलेगा, वो झूठ खंड स्थापन करेगा। और तुम तो सच खंड स्थापन करने वाले सत्युग में जाने वाले हो ना, त्रेता में राम सीता को बल देवता कहते हैं, परंतु वो कोई सत्युग की नहीं है, क्या दो कलाएं कम हो जाती है, आत्मा की सच्चाई कम हो जाती है। बस देवता कह देते हैं, परंतु स्वयं ही देवता है, 25% कम हो जाता है, उनकी कलाएं कितनी कम हो जाती है, दो कलाएं कम हो जाती, तुम जानते हो। हम यहां आए हैं नरसिंह नारायण बने, क्या वो ब्रह्मा कुमार कुमारी वो ब्राह्मण नहीं जानते कि हम यहां ये पढ़ाई पढ़ने के लिए किस लिए आए हैं, तुम जानते हैं क्या जानते हो। कहते हैं हमें यहां तो शरीर छोड़ देंगे ब्रह्मा बाबा की तरह मम्मा की तरह, और अगले जन्म में जाके सतयुग में जन्म लेंगे, लेकिन तुम जानते हो कि हमको यही नर से नारायण जैसा बनना है, तो नर से प्रिंस बनना पड़े, बैगर टू प्रिंस, जो यहां तन धन दाम स्वर्ण परिवार साथ की बाजी लगा करके ईश्वरीय सेवा में बैगर बनेंगे, वो बैगर तो क्या बनेंगे, प्रिंस बनेंगे, जरूर बनेंगे। इनकी फिर झूठी कथा बनाएंगे, इनकी वो बैगर तो प्रिंस और प्रिंस से नारायण बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं, उनकी कैसी कथा बनाई थी, झूठी कथा बनाई, झूठी कथा बनाई, उनकी सच्ची कथा होनी चाहिए, झूठी कथा क्यों बनाई। क्योंकि यहां शूटिंग पीरियड में ही जो नर से नारायण बनने वाले होते हैं उनका पुरुषार्थी जीवन में सारा झूठ ही झूठ चलता रहता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या चलता है उनके बारे में, झूठ ही झूठ चलता रहता है। तो झूठ ही घटना में बैठ गई जो जन्म जन्मांतर तुमने सुनी क्या, कौन सी कथा है मुख्य, नाम क्या है, सत्यनारायण की कथा नाम देते हैं सत्यनारायण की कथा, और उसमें सत्यनारायण की जीवन कहानी का नाम निशान है ही नहीं। लकड़हारा, लकड़बग्घा, लीलावती, कलावती की कहानी है और सत्यनारायण की कोई कहानी है ही नहीं। कब राम सीता बनने के लिए कथा नहीं सुनी क्या है, राम सीता बनने के लिए कोई कथा नहीं और सत्यनारायण बनने की कथा है, वो भी झूठी बनाई थी। राम सीता का जो कहानी वो कथा है वो कोई स्वर्ग तो नहीं है। रामायण आदि की जो भी कथाएं तुम सुनते आए हो तो सब नरक में ले जाने का, उनको सुनने से तुम्हारी दुर्गति ही हुई है। रामायण की कथा किसने बनाई, अरे तुलसीदास ने बनाई ना, मनुष्य नहीं बनाई ना, तो मनुष्य की बनाई हुई कथा सुनने से तो वही दुर्गति हुई। मनुष्य को सदगति दे ही नहीं सकता, फिर मनुष्य की सदगति कैसे होगी, कौन देगा? जो मनुष्य नहीं है मन मनन चिंतन मंथन करने वाला ना रहे, जब तक मनन चिंतन मन चलता है तब तक क्या है, मनुष्य। और मन को अमन बना दे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, इसके अलावा कोई संकल्प ना आए, ऐसी स्टेज जब बन जाए तो कहेंगे निराकार। क्या कहेंगे उसे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये भगवान करूं कहते हैं आत्मा से परमात्मा। क्या 500-700 करोड़ आत्माएं ज्योति बिंदु सब परमात्मा बिंदु बन जाएंगे, बन जाती हैं क्या है? नहीं, वो तो एक आत्मा का दायन है क्या, जो आत्माओं का, जीव आत्माओं का जो बाप है, मनुष्य सृष्टि का पिता है, उसी का ये गायन है। वो भी गायन तब है जब उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, प्रवेश करके संघ का रंग लग जाता है तो वो क्या करो, नर से नारायण जैसा बन जाता है।